अध्यात्म जगत के आकाश में मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर रूहानी ज्ञान योग की किरणें फैलाने वाले आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी के धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। मम्मा के अव्यक्त होने से एक वर्ष पहले अर्थात 1964 में आप ज्ञान में आए और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से एक वर्ष पहले मधुबन में अर्थात 1968 में आप मधुबन में आए और आपका ये सौभाग्य रहा पूरे एक वर्ष तक साकार बाबा की पालना में पलने का। और उसका ही हम नतीजा देख रहे हैं कैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन पूरे विश्व को समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। न सिर्फ समस्याओं का समाधान दे रहे हैं लेकिन समस्याएं उनके जीवन में न आए उसके लिए इन एडवांस रूहानी ज्ञान और योग की रोशनी सर्वत्र फैला रहे हैं। तो ऐसे महारथी भाई से भ्राता जी से आज हम सुनेंगे कैसे हम मनसा सेवा करके विश्व की सेवा करें। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। कौन कौन चाहते हैं आप में से मनसा सेवा करना? सब चाहते हैं। क्यों क्यों चाहते हैं? बोला, इसका उत्तर तो सहज है। हैं? उसी के लिए आए हैं। अच्छा, कौन कर सकते हैं मनसा सेवा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहेंगे तो सब। जिसके पास शक्तियों का स्टॉक हो। कैसे आएगा वो? बहुत अच्छे योग से। अब जिस बल्ब में रोशनी थोड़ी सी हो वो कितनी दूर फैलेगी? जितने कोई योगयुक्त हैं उतनी ही वो मनसा सेवा कर सकते हैं। गीत में आई हैं कई लाइनें। और भावनाएं कैसी हो? बोलो भाई, बोलो। चुप हो गए ऐसे जैसे कुछ नहीं आता। शुभ भावनाएं। और हमारी यदि शुभ भावनाएं नहीं होंगी तो किसकी होंगी? सोचो, जिनको भगवान ने पाला हो, गाइड किया हो, शुभ भावनाओं का महत्व बताया हो, उनकी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं होनी ही चाहिए। विचारों में गजब की शक्ति है, गीत बता रहा था। हमारी शुभ भावनाओं की शक्ति, बहुत सुंदर ये महावाक्य हैं। बढ़ाएंगे सभी अपनी स्थिति को। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बदलने का बल देती हैं। जो थोड़ा भी बदलना चाहते हैं और हमारी शुभ भावनाएं भी हों तो वो जल्दी ही बदल जाते हैं। तो पहले आज सबको चेक करना है, क्योंकि मनुष्य ने कलयुग के अंत में आते आते अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ लिया है। इसकी पहचान किसी को नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती कहीं, इसके लिए कोई चर्चा भी नहीं है दुनिया में। भावनाएं बहुत दूषित और निगेटिव हुई हैं मनुष्य की। कैसी कैसी भावनाएं होती हैं? बदले की भावना। सब चेक कर लें, सबके अंदर है, छोटा रूप बड़ा रूप, किसी ने चार बुरे शब्द बोल दिए, क्या रहता है मन में? देखूंगी जरा, आने दो टाइम। बदले की भावना रहती है या नहीं? थोड़ी थोड़ी, बड़ी तो क्या होगी यहाँ किसी की, वो तो हमें युद्ध तो करने नहीं है, लेकिन छोटी बदले की भावना चेक करें सभी, और इसको चेंज करना है। बदले की भावना को किसमें? नहीं, क्षमा भाव। और क्षमा कौन कर सकते हैं दूसरों को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ऐसे भी कहते सुने जाते हैं, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा, सारी दुनिया को कर दिया पर एक को रखा हुआ है मैंने, इसको माफ नहीं करूंगा। गड़बड़ की है ज्यादा, बात भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। अपना बन के बड़ा धोखा दिया है समय पे, तो मनुष्य को रहता है इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बदले की भावना क्या करती रहेगी, बोलो, ये जलाती रहेगी अंतर की शांति को। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है संगम युग पर, सुख शांति खुशी शक्तियां गुण, इन सब खजानों को जमा करना, ताकि आने वाले समय में हम बाबा का महान कार्य कर सकें। आने वाला समय ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान दिया जाएगा, प्रदर्शनी मेले होंगे, ऐसा नहीं होगा। मनसा सेवा, दृष्टि की सेवा, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा, शांति देना। दुख इतना बढ़ जाएगा, एक सीन तो देख चुके दुख का कोरोना में, लेकिन मनुष्य की आदत है ना, जल्दी भूल जाता है, अरे तो पहले भी होता रहा है, छोड़ हो गया, पूरा होते ही पूरा हो जाता है, ठीक है, भूलने में ही भला है। लेकिन ऐसी घटनाओं से हम कुछ प्रेरणा ले लें तो बहुत अच्छी बात है। घटनाएं तो होती रहेंगी। मैं बाबा की एक बात सुनाता रहा हूं बहुत साल से, कि ये विनाश काल में अनेक घटनाएं होंगी, मैं तो 10 कहता हूं अंदाज से, 10 बड़े बड़े सीन हमें देखने पड़ेंगे। बड़ा सीन होगा जैसे कोरोना हुआ, फिर शांति हो जाएगी, फिर बड़ा सीन होगा, फिर शांति हो जाएगी। इसका लक्ष्य है ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाना, वैराग्य दिलाना, क्योंकि वैराग्य तो जीरो है अभी। ठीक कहा मैंने या गलत बोल दिया? बराबर बोला, वैराग्य जीरो है, और वैराग्य के बिना कोई भी श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते। तो इन सब से वैराग्य भी आएगा, ब्राह्मण आगे भी बढ़ेंगे, और जो कच्चे बच्चे होंगे वो निकलेंगे भी, बाबा की शिकायत करते हुए, बाबा ने मुझे मदद नहीं की। अभी भी दो तरह की आत्माएं देखी हमने, मेरे पास ज्यादा आते हैं ना अपनी बातें लेकर, कुछ लोग बाबा को उलहना देते हुए, हमने बाबा के लिए इतना इतना किया था, बाबा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठंडे हो गए बाबा से दूर। और कुछ लोगों को चमत्कारी का अनुभव, वाह 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 वाह, कई तो चले भी गए परिवारों के, तो भी माताओं को मैंने देखा अचल अडोल स्थिति में। एक माता की कहानी में सुनाया, एक की नहीं कईयों की है, पति भी गया कोरोना में, जवान लड़का भी, लेकिन इसकी स्थिति सचमुच एग्जाम्पल। और कईयों का ऐसा हुआ, पति की आयु 60-65 साल भी थी, चला गया तो बाबा को ही छोड़ दिया। अब पति बनाना चाहिए था भगवान को, उसको भी छोड़ दिया, तुम भी जाओ, एक गया तो दूसरे को क्यों रखूं। दोनों सीन आगे भी दिखाई देते रहेंगे, तो ये झटके लगते रहेंगे बड़े बड़े। हमें अपने इसको बहुत स्वच्छ करते चलना है। बदले की भावना नहीं, दूसरी भावना होती है नफरत की भावना। किसी ने किसी के लिए कुछ कुछ किया ही है ना। कलयुग का अंत है, दो चार जन्म ऐसे हुए हैं जिसमें कर्मों का खाता ज्यादा जटिल हुआ है। नफरत को भी हमें बदलना है प्रेम में, दूसरों के लिए श्रेष्ठ भावनाओं में, क्योंकि ये नफरत भी इसका दूसरा हिंदी शब्द है घृणा, और घृणा को कहते हैं घुण। जानते होंगे आप घुण, गेहूं में लग जाता है छोटा सा कीड़ा, गेहूं का अंदर का माल खा जाता है, छिलका छोड़ देता है। हमारे यहाँ भी बहुत लगते थे यज्ञ में, फिर वो दवाई डालनी शुरू की तो वो मरे, नहीं तो हर साल बहुत सारे गेहूं बेकार कर देते थे वो। तो घृणा घुण की तरह है जो हमारी अंदर की खुशी और शक्तियों को खाती जाती है। बदलेंगे इनको, और तीसरा बाबा बोलते हैं किसी के लिए भी निगेटिव भावनाएं। बहुत अच्छे महावाक्य थे बाबा के, कभी अगर आपके मन में एक आत्मा के लिए भी निगेटिव भाव है तो वो तुम्हारी सकास के मार्ग में दीवार है, उसको जाने नहीं देगा दूर तक। बहुत अच्छे ऐसे महावाक्य एक एक बार ही आए हैं मूल्यों में। तो हमें सकास भी देनी है और मन से दूसरों के लिए सुंदर संकल्प भी करने हैं, जो गीत में भी थे, सभी सुखी हों सभी का भला हो। इसको कामना कहते हैं, कामना इच्छा, सबके लिए सुविच्छा है ये हमारी, सब सुखी हो जाएं। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर हो जाता है, भावना और कामना में। तो हम सभी आज प्लान बनाएंगे, केवल क्लास नहीं करेंगे, प्लान बनाएंगे कि रोज सवेरे और शाम 15-15 मिनट तो संसार को सकास देनी है। इसको अपना मुख्य काम मान लो, अपने जो लौकिक काम है ना उसमें इस काम को जोड़ लो, ये भी हमारा मुख्य काम है। मुरली सुनना भी हमारा मुख्य काम है, अमृत वेला नेचुरल जग कर अच्छा योग करना ये भी हमारा काम है। तो कई लोग कहते हैं ना हम कार्यों में बहुत बिजी हैं, इसको भी जोड़ो तो कार्यों में इजी हो जाएंगे। जो बहुत बिजी लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिजीनेस, बिजी लाइफ ये काम के कारण नहीं है। बताओ किसके कारण है? व्यर्थ संकल्पों के कारण है, जिसका पता अनेक आत्माओं को चलता ही नहीं है कि वो बहुत सोचते हैं। व्यर्थ को कई लोग सोचते हैं बुरा सोचना, हम बुरा नहीं सोचते, लेकिन ज्यादा सोचने का संस्कार इस संसार में इस समय 90% लोगों में है, ज्यादा सोचना। काम कर रहे होंगे एक, सोच रहे होंगे न जाने क्या क्या, मन की स्पीड तेज हो गई है, और मन की स्पीड तेज होने से फिजिकल स्पीड, काम करने की स्पीड धीमी हो जाती है। हमें लगता है बहुत बिजी हैं, पर हमारी स्पीड धीमी हो गई, जो काम आधे घंटे में होता वो एक में हम करते हैं, इसलिए लगता है बिजी हैं। करके देखो, थोड़े से अच्छे अभ्यास जीवन में जोड़ लें, आपको लगेगा हम फ्री हो गए। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूं यहां का, बहुत साल पहले की बात है, शायद 45 साल हो गए होंगे। संडे को मुरली चल रही थी अव्यक्त, कुछ मौन की बात आ गई। यज्ञ में उन दिनों मौन बहुत चलता, जब तक दीदी मनमोहिनी थी हर सोमवार और गुरुवार को मौन रहता था। तो सभी ने तय किया एक मास मौन रखा जाएगा, अति उमंग थी मुरली सुन के। एक मास मौन सबको रखना कठिन काम नहीं था, जो कभी चुप नहीं रहे थे उनके लिए तो मुश्किलात हो गई। लेकिन पहला दिन यज्ञ ऐसा हो गया था, थोड़े लोग होते थे, हम 40 होंगे यहाँ, यज्ञ ऐसा होता हो गया मानो परम धाम, और बहुत लोग बोलने लगे कि कुछ करने को ही नहीं रहा, क्या करें सारा दिन। ये बहुत सुंदर अनुभव था, ये चीज मुझे याद रहती है, फ्री हो गए, काम ही नहीं रहा, क्योंकि बिजी लाइफ किसी और चीज के कारण होती है। तो हम सभी अपनी भावनाओं को शुद्ध करेंगे, निकालेंगे 15-15 मिनट, बोलो, थोड़ा कठिन काम तो है, 15 मिनट निकालना कठिन काम नहीं, पर सकाश वही दे सकते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर हो, नहीं तो कहेंगे अरे छोड़ो कल करेंगे। बुद्धि यदि स्थिर नहीं है तो योग में रुचि नहीं रहती, मन बहुत भटकता हो तो नेचुरल मनुष्य उसी से हट जाता है, और बुद्धि को बहुत भटका दिया है आजकल किस किस चीज ने, एक तो मोबाइल ने, जो भी बड़े लोग भी मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना है, बच्चों को तो रोकना आजकल कठिन काम है, वो तो एडिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, व्यसन बन गया है, और जिन बच्चों को ये व्यसन लग गया उनकी पढ़ाई लिखाई गई, एकाग्रता समाप्त हो जाती है। पर ये ध्यान देना है बड़ों को भी, उठते ही और सोने से पहले मोबाइल नहीं, ये नहीं फेसबुक पे क्या क्या आया है, व्हाट्सएप पे कितना माल आ गया होगा आज हमने देखा ही नहीं, ये नहीं, क्योंकि दोनों टाइम हमारा अंतर मन जगा होता है, उस टाइम मोबाइल देखना उसका गहरा इफेक्ट जीवन पर पड़ेगा। उस टाइम तो मैं गया अभी एक सेंटर में, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आया हूं, जैसे ही सवेरे का उठने का गीत बजता था अव्यक्त मुरली शुरू कर देते थे। कहा तो मैंने ही था कभी सब टीचर बहनों को, कईयों ने फॉलो कर लिया, माहौल सुंदर हो जाता एकदम, सो नहीं सकता कोई व्यक्ति बाबा की आवाज सुन के, उनकी सुंदर बातें सुनकर। तो अपना कुछ अच्छा प्लान बनाएंगे सभी। तीसरी चीज, श्रेष्ठ भावनाएं, योग बहुत सुंदर, और तीसरा सकाश देने के लिए, मनसा सेवा के लिए कौन सी और चीज चाहिए, बोलो। आप में से बहुतों के पास वो बहुत अच्छी होगी, थोड़ों के पास कच्ची कच्ची होगी। प्योरिटी, मन शुद्ध, और बाबा ने प्योरिटी की डेफिनेशन बहुत गहरी गहरी अभी 6 मास के अंदर ही अव्यक्त मूल्यों में दे दी है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको याद होगा। व्यर्थ संकल्पों में रहना भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योर संकल्प की बात नहीं, बिना मतलब के संकल्पों में रहना भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि आत्मा की शक्ति उससे नष्ट होती जाएगी। जिसने अपने को पूरी तरह अंतर्मुखी बना लिया हो, अंतर्मुखता की परिभाषा गहरी है, चुप रहना केवल नहीं, बुद्धि का जो बाह्य आकर्षण है जिसको बाह्य मुक्ता कहते हैं, बाहर की ओर जो आत्मा देखती है आकर्षित रहती है, उसको समेट कर अपनी ओर आ जाए, आत्मचिंतन में आ जाए, अंतर्मुखता होती है। इस पे सभी को ध्यान देना है। तो पावर ऑफ प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। गीत में ये भी एक शब्द था पवित्रता का, उससे प्रकृति पावन होती जा रही है। जो जितना पवित्र है वो कुछ करे या ना करे योग का अभ्यास, लेकिन उसके वाइब्रेशन से प्रकृति पावन होती जाती है। इसलिए इस पावर को बहुत बढ़ाते चलना है। योग का इससे गहरा कनेक्शन है, आत्मिक दृष्टि से गहरा कनेक्शन है, मोह को छोड़ने से गहरा कनेक्शन है। ये सब धीरे धीरे छोड़ते चलना ही है। सबसे गहरी जड़ें कौन से विकार की हैं? बोलो। नहीं, मोह की, जो इस संसार को बहुत कष्ट देगा। अगर खुले में कहूं तो मात्र शक्ति बहुत पीड़ित होगी मोह के कारण विनाश काल में। अपने को थोड़ा पावरफुल बनाते चलें, नहीं तो इसका इफेक्ट मानसिक रोग पैदा कर रहा है, प्रैक्टिकल में। और कोरोना में जिनको कोरोना हुआ हमने देखा, बहुतों को मन पर बुरा इफेक्ट आ गया। उसका बिना मतलब भी, उन्हें कुछ सब अच्छा है लेकिन भय पैदा हो गया मन पर, मन कमजोर हो गया, ब्रेन कमजोर हुआ, ये देखा बहुत केसेज में। डॉक्टरों को भी ये बात समझ में नहीं आती ये सब क्यों हुआ है। इसलिए अपने को बहुत पवित्र बनाना, और पवित्रता की फाइनल परिभाषा बाबा ने दी है मुरली में, साकार में, बुद्धि एक के सिवाय कहीं न जाए। अगर वो दैहिक आकर्षणों में, सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में भी जाती है तो ये भी आत्मा को प्योरिटी की पावर में कमजोर करता है। अब हम क्या करेंगे? पहले मैं आपको आपके लिए बहुत यूजफुल, फायदेमंद एक विधि बता देता हूं, जिसका प्रयोग हम कई जगह कराते हैं और रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं। आपको अपने परिवार को सुंदर बनाना है पहले। बहुत माताएं चाहती हैं, सभी चाहते हैं परिवार ज्ञान में हो, चाहते हैं या नहीं, या हमारे बच्चे तो शादी करें, कुछ की ये भी इच्छा होती है, हमारी लड़की शादी करे, हम मुक्त हों, कौन झंझट में रहेगा, कौन पालेगा इन्हें जीवन में, ये भी होता है। लेकिन बाबा का ये शब्द है, आपको याद दिला दूं, दूसरों की पवित्रता की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है। कईयों के साथ हो चुका है प्रैक्टिकल में, पिछले 5 सालों में। लड़की चाहती थी मैं पवित्र जीवन जीऊं, माँ बाप ज्ञान में होते हुए भी शादी करा दी, 1 साल के बाद घर आ गई वापिस, फिर कहते बदनामी करा दी इसने हमारी समाज में, पैसा भी बहुत खर्च हो गया था। लेकिन असली बात क्या हुई, समझ गए ना? दूसरे की और अपनों की प्योरिटी की रक्षा करना, सुन रही माताएं ध्यान से, क्योंकि इच्छा माताओं को ज्यादा होती है, लड़के की शादी हो जाओ, बहू का मुंह तो देख लूं। और फिर ऐसा हो जाता है, मैं हंसी में कहता हूं ना, क्योंकि ये घटनाएं बहुत हो रही हैं, अब इस बहू का मुंह नहीं देखना चाहती, दौड़ ले जाओ मेरे से इसे, ऐसा हो रहा है जहां तहां। आजकल भारत में डिवोर्स, तलाक बड़ा कॉमन होता जा रहा है। विदेशों में था, जब मैं पहली बार विदेश में गया था, मैं सोचा हमारा भारत कितना महान है। रेयरली, क्यों राजेश भाई, रेयरली यहाँ तलाक होते थे, बड़ी बुरी बात मानी जाती थी। विदेशों में तो एक एक को 3-3 बार शादी करनी होती थी। मैं क्रिश्चियन कंट्रीज में गया, मैं देखा ये तो तैयार रहते हैं, कब छूट जाए फिर दूसरा ढूंढेंगे, सब मिल जाता है इस पे, नेट पे, 3-3 बार। इसलिए सब अपना अकाउंट अलग रखते हैं, सबकी कार अलग, सबके घर अलग, जब हुआ चलो तुम अलग हम अलग, फिर दूसरा। मैं सोचता था क्या कल्चर है इन देशों की, बच्चों की पालना कौन करे, बिखर जाते हैं ना बच्चे फिर। लेकिन अब भारत में ये रोग बहुत बुरी तरह फैल गया और भारत की कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए ये चीज यहाँ बहुत अशांति पैदा कर रही है। कितने घरों में टेंशन और अशांति इससे हो रही है। इसलिए तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अपनों की पवित्रता की रक्षा करना ज्ञानी आत्माओं का परम कर्तव्य है। बाबा का बल मिलेगा बहुत, बाबा की मदद और बाबा का बल सबको चाहिए। चाहिए या नहीं? मैं देखता हूं, एक केस है मेरे पास, जब वो लोग आते हैं मैं कहता हूं इस व्यक्ति को बाबा की मदद नहीं मिल रही है, और कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, पर प्रभु जी इससे राजी नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रही है बार बार। भगवान हम पर राजी रहे, विचार कर लेना। टॉपिक ये नहीं है अभी, हम मनसा सेवा पर चलेंगे तो आपके परिवारों में सब कुछ अच्छा रहे। क्या क्या समस्याएं हैं वो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं, बच्चे फोन पे रहने लगे हैं, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या पति या लड़का शराब बहुत पीने लगे हैं, क्या करें? ये मैं दो चार गिनाई जो मेरे पास आते हैं। कई बाप तो ऐसे हो गए आजकल, पहले खुद पीते थे बहुत, अभी बच्चों को बैठ के पिलाने लगे। हिंदी में एक कहावत बचपन से सुनते आते थे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हम माता जी परेशान के ये खुद तो बिगड़ा हुआ था है, तो बच्चों को भी लगा लिया अपनी लाइन पे। अब कहने से तो काम नहीं चलता, कैसे इन चीजों को ठीक करेंगे? सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना, तो आपको कोई समस्या के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। सवेरे एक टाइम फिक्स करो, और वो टाइम अगर वो हो जब वे सोए हों तो बहुत अच्छा, सोए हों, बिल्कुल सहज है सबके लिए, सब जल्दी उठते हैं, बाकी सब तो बाद में उठेंगे। एक टाइम फिक्स कर लो, रोज सेम टाइम पर करना, उसी समय रोज करना होगा ये प्रयोग। उनको 5 मिनट वाइब्रेशंस देंगे। कैसे देंगे? चाहे वो आपसे दूर सोए हैं, दूसरों कमरों में सोए हैं, या आपके साथ हैं बैठ कर या खड़े होकर या लेटे लेटे, जो आपको करना हो। लेटे लेटे करने से तो नींद आ जाती है, लेकिन कईयों की घर में ऐसी परिस्थिति होती है वो उठ नहीं सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सब यूज किया। 5 मिनट पूरे परिवार को सकाश देना, सिंपल तरीका अपनाना, मैं इष्ट देवी हूं, बाबा मेरे साथ है। भाई लोग दूसरा संकल्प ले लें, मैं पूर्वज हूं। सबके लिए है यद्यपि ये शब्द, इसमें भाई बहनों की बात नहीं होती, पूर्वज सभी हैं, पर भाई लोग इजी के लिए, मैं पूर्वज हूं, बाबा मेरे साथ है। मैं बिल्कुल सरल कर रहा हूं इसको, नहीं तो बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, या बाबा की किरणें पड़ रही हैं, कुछ देर ये अभ्यास करके फिर अभ्यास करना, मुजात्मा से भ्रकुटी से किरणें पड़ रही हैं। मान लो 5 हैं आपके परिवार में, 5ों पर एक एक पे डाल देना, आत्मा देखकर इस आत्मा पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर किरणें, जैसे यहां से एक फाउंटेन निकलने लगा, सब पे पड़ने लगा। लाइट का भी देखा होगा आपने, जैसे फैलने लगती है, आजकल हेलोजिन की फैलती है, यहां से फैलने लगी, अच्छा सब पे पड़ गई। उसके बाद मन से उनसे बातें करना, मनसा सेवा है ये, और पहला संकल्प देना, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, यही संकल्प करना पहला। ये स्वमान है, क्योंकि मन में कभी कभी खराब संकल्प भी होते हैं, ये मेरा पति बहुत खराब है, ये नहीं, ये तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, पसंद है, कर सकते हैं, उसमें कई अच्छे नहीं भी होंगे। मेरे गुड फ्रेंड हो, सोच लेना आप, तुम शिव बाबा के बच्चे हो। इन 3 संकल्पों से क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस को वो तेजी से ग्रहण करने लगेंगे, जो आप बोलेंगे ना आप मन से, अब उन्हें आपको अच्छा संकल्प देना। मान लो कोई क्रोध बहुत करता है, क्रोध अग्नि है, इसे शांत कर लो, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो। शराब पीता है, तुम तो देव कुल की आत्मा हो, ये शराब तो बुरी चीज है, इसे छोड़ दो। कोई मोबाइल पे ज्यादा रहता है, इस मोबाइल से तो बैड रेडिएशन फैलता है, बुरी बुरी तरंगे, इसका ब्रेन पर, हेल्थ पर, हार्ट पे बुरा असर आता है, इसका ज्यादा यूज ना करो। ऐसे जैसे आप कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर, लास्ट लाइन हो ऑर्डर वाली, इसको कहते हैं कमांड, लास्ट लाइन। तो जब वो सोए हैं तब उनका सब कॉन्शियस माइंड, अंतर मन बहुत पावरफुल है, जगा हुआ है, तुरंत ग्रहण करेगा। अगर आप 7 दिन सेम टाइम कर दो, वही समय रोज 7 दिन, तो उनके विचार बदलेंगे। किसके विचार भी बदलने हो, कोई आपका शत्रु बन गया हो उसको मित्र बनाना है, कोई आपको धोखा दे रहा है उसको ऑनेस्ट बनाना है, किसने आपका धन ले लिया है लौटा नहीं रहा है उसमें आपको इच्छा जागृत करनी है कि लौटा दो, ये सब काम इस सेवा से किए जा सकते हैं। 7 दिन के बाद और 21 दिन तक, पर 7 दिन में चेंज प्रारंभ हो जाएगी। और एक बार नहीं, 3 बार वही संकल्प देने हैं, 3 बार। क्लियर है सभी को? इससे बहुत चीजें की जा सकती हैं। ये शुभ भावनाएं भी हो गई, दूसरों के लिए स्वमान की दृष्टि भी हो गई, और थोड़ा वाइब्रेशंस भी उनको जाएगा, और आपको अपने अपने घरों में ऐसे ही सुंदर वाइब्रेशंस बनाने हैं। अपने घर में 2-3 बार भी, 1 बार भी, 1 से कम तो नहीं होता ना कुछ भी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये सब बाबा के महावाक्य, व्यक्त बाबा के, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 2-3 मिनट अभ्यास कर लो, कम से कम 1 मिनट, आपके घर का वातावरण बदलता जाएगा। बाबा के ही महावाक्य हैं, जिस स्थान के वाइब्रेशंस को बदलना चाहते हो वहां बैठकर ये अभ्यास करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। दूसरा अभ्यास जो मैंने तो बहुत किया है जीवन में, इसलिए कराता भी हूं सबसे, और आप उससे अच्छी तरह परिचित हैं, बाबा का आह्वान। आप में से कई करते होंगे, कौन कौन करते हैं? अच्छा, थोड़े हैं, और बढ़ा देना। अगर आप बिल्कुल अपने घर को तीर्थ बनाना चाहते हैं, बोलो क्या इरादा है? चाहते हैं तीर्थ बनाना, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना, एक मकान भी बनाना हो या फिर तो नहीं बन जाएगा कि हम एक मकान बनाना रोज सोचते रहे, बन जाएगा? अगर आप अपने घर को तीर्थ बनाना चाहते हो, बोलो कौन कौन माताएं चाहती हैं, हाथ उठाओ सच्चे मन से, मेरे दूसरों को देख के ना उठाना कि बड़ा अच्छा मौका मिल रहा आज बन जाएगा। 2 अभ्यास बिल्कुल अनुभव हैं ये माताओं के, ज्यादा जिन्होंने किया है उनके पतियों के द्वारा ये शब्द बोले जाते हैं। 1 अभ्यास करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, भाई लोग भी करेंगे, मैं इस घर में इष्ट देव हूं, पूजनीय। 5-7 बार तो जरूर कर लेना है, ये चीजें रटने की नहीं होती, मान लेना, फीलिंग होती है मान लेने से, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। और ऐसे ही 5 बार बाबा का आह्वान, अब लंबे समय की बात ना सोचो, एक मिनट। बाप दादा को बुलाओ, बाबा आ जाओ, फील करो इतना ही बस, कि बाप दादा दोनों आपके घर में खड़े हैं, किरणें फैल रही हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं पूरे घर में चारों ओर। एक मिनट भी बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए। दो तीन मिनट करेंगे तो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हो जाएंगे। इसलिए परेशान नहीं होंगे कि हमारे घर में फलाना व्यक्ति बहुत अशांति करता है, इसके कारण हमारे घर में शांति नहीं है। ये ठीक हो जाए तो घर अच्छा हो जाए। प्रैक्टिकल बात होती है, मनुष्य ये सोचता ही है। किसी एक के कारण, एक व्यक्ति क्रोध करता है या शराब बहुत पीता है, अशांति रहती है। लेकिन अगर ये आप करेंगे तो बिना कहे दूसरों में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बड़ी मनसा सेवा होगी ये। आजकल कहने से कुछ होता नहीं है। आप अपने बच्चों को कुछ कहेंगे, वो चार सुना देंगे आपको, होता है या नहीं। दूसरी बात मैं एक हंसी की और कह देता हूं, हंसी की है पर गहरी भी है। कई माताएं शिकायत करती हैं, पति सुनता नहीं है। कईयों की शिकायत होगी। मेरा तो एक ही उत्तर होता है, तुम ज्यादा सुनाती हो। और मैं एक फॉर्मूला देता हूं, पूछता हूं, कर लोगी तो कर लेना, तुम्हारी मर्जी। 15 दिन कुछ भी सुनाओ नहीं, देखो रिजल्ट। बच्चों की भी यही बात है, बच्चे सुनते नहीं। अब माँ ज्यादा कंट्रोल रखती है, यहां ना जाना, ये ना करना, वो करना। बच्चे आजकल दूसरा है ना सब कुछ, बच्चों का यंग पीढ़ी दूसरे रूप में है आजकल। जब आप यंग थे तो वो जमाना अलग था, अब युग बदल गया है, युग बदल गया है। इसलिए कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही होता है। जो समय अनुसार स्वीकार नहीं करते उन्हें कष्ट होता है। देखो धर्मों में भी तो यही बात रही। धर्म पिताओं ने धर्म जब स्थापित किए, समय द्वापर का भी बहुत सुंदर था। द्वापर का समय कोई बेकार था ऐसा नहीं, अति सुंदर। भारतीय इतिहास में उसको स्वर्ण काल कहते हैं। धर्म स्थापकों ने जो सिद्धांत बनाए वो उस समय के अनुरूप थे। समय बदला, वो सिद्धांत आज लागू नहीं हो सकते। जिन लोगों ने, जिन धर्मों ने अपने धर्म के सिद्धांतों में अमेंडमेंट नहीं किया, सुधार नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, वो पीछे रह गए या कट्टर हो गए, उससे कुछ होता नहीं, धर्म कमजोर पड़ गए, होता है या नहीं। और जिन्होंने समय अनुसार उसके सिद्धांतों को नया रंग दिया, वो सॉलिड हो गए। कमजोर बनाने की बात नहीं, कुछ परिवर्तन की जरूरत होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। कल तो बाबा ने मुरली में एक और भी कही थी, धैर्य। याद है कल की सवेरे की मुरली? धीरज, निर्भयता, स्वीकार करना। तीसरा जोड़ लें, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके अपनी स्थिति को अचल अड़ोल रखने से ही परिस्थितियां बदलेंगी, नहीं तो मार डालेंगी परिस्थितियां, बहुत खराब हाल कर देंगी। हम अपनी अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट इतना जबरदस्त है, इससे सब कुछ बदल जाता है। तो एक काम और रोज करेंगे, मैंने 2 टाइम आपको कहा 15-15 मिनट, उसी में आप ये कर सकते हैं, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। क्योंकि आत्मा प्रकृति से सदा ही जुड़ी है। हमारी भारतीय फिलोसफी में हम पहले से ही पढ़ते आते थे, ये खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। पुरुष माना आत्मा, गहरा नाता है। शास्त्र वाले भी कहते हैं कि प्रकृति भी सतो रजोत्तमो बनती है। मैं पूछ लिया करता था लोगों से, क्यों प्रकृति को क्या होता है जो सतो से तमो बन जाती है? मनुष्य तो गड़बड़ करता है इसलिए तमो में आ जाता है, लेकिन प्रकृति क्या गड़बड़ करती है? सबके पास उत्तर है ना, मनुष्य की स्थिति के वाइब्रेशंस का इफेक्ट प्रकृति पर पड़ता रहता है। तो मालिक है आत्मा, इसलिए बाबा कहते तुम प्रकृति की मालिक हो। बहुत गहरी बात बाबा की मुरलियों में दो आई हैं, जिसको समझना काफी सूक्ष्म चीज है। समय तुम्हारी रचना है। एक बार मुरली चल रही थी, अभी भी आई है वो रिपीट होके, सूरज पानी सुखाता भी है पानी बरसाता भी है, दिन भी करता है रात भी करता है, वो तुम्हारी रचना है। अब सूरज हमारी रचना कैसे हो गया भाई? सूक्ष्म गति है। इसके दोनों के अर्थ हैं हमारी जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्थिति प्रकृति की और समय की गति भी वैसी होगी। समय को गति देने वाली भी हम में से ही कुछ महान आत्माएं हैं, इसलिए हम उसके क्रिएटर हो गए। जैसे दुनिया का क्रिएटर तो कोई नहीं है ना, बदलते हैं बाबा, उनको क्रिएटर कह देते हैं। तो हम प्रकृति के मालिक हैं, प्रकृति का सहयोग हमें चाहिए। प्रकृति शरीर भी है, इसका भी पूरा सहयोग चाहिए। सतयुग त्रेता में वो हमारी थी, कोई कठिनाई नहीं थी। कलयुग के अंत में आके हमारे ही कारण वो खाली हुई, निगेटिव हुई, मनुष्य के कारण। अभी हमें उसको अपना सहयोगी बनाना है, पवित्र करना है, पावन करना है। तो फिर से 10-5 मिनट रोज प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना, इसकी बहुत जरूरत है। तो संसार को भी देना, दो टाइम में ही आप सब जोड़ सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, 5 मिनट भी प्रकृति को रोज पवित्र वाइब्रेशन देना। लेकिन जो हम पहले चर्चा कराए हैं, जितने पवित्र हम होंगे, हमारे वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर की प्रकृति को पावन करते जाएंगे। सबसे जल्दी हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है जल, जो हमारे शरीर में बहुत है, 70% जल ग्रहण करता है। एक भाई आज भी मुझे मिल रहा था नीचे, वो अच्छी पोस्ट पर है, उसको कभी कमर दर्द हो गया था बहुत ज्यादा 7-8 साल पहले, और इतना हो गया था कि नौकरी भी छोड़नी पड़े और मृत्यु हो जाए। मैं पांडव बन गया तो मेरी किसी ने उससे बात कराई और वो ठीक हो गया। तो आज वो मिल रहा था मुझे मीटिंग में, अच्छी पोस्ट पर है वो, तो बताया कि मैं तो शरीर के सारे पानी को ही चार्ज करता रहता हूँ रोज। आप तो सिखाते हो पानी चार्ज करके पियो, मैं 70% पानी जो शरीर में इसको ही चार्ज करता हूँ तो तन ठीक रहता। अब उसको कोई भी मान नहीं है और दवाई नहीं की कोई भी, मृत्यु से बाहर आ गया है। तो पानी सबसे ज्यादा, इंग्लिश में शब्द है, सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए। इस पर तो वैज्ञानिकों ने काम किया ना, हमारे यहां भी आ चुके वो दोनों वैज्ञानिक जापान के, एक तो अभी भी होके गई, 6 तारीख को ही गई, 5 को गई, यही आई थी पानी पर। उनको देखकर उनके साथ बहुत सारे वैज्ञानिक पानी पर भिन्न भिन्न प्रयोग करने लगे। सिंपल एक युवा वैज्ञानिक कर रहा था, आपने देखा हो व्हाट्सएप पे भी किसी ने डाला था, पानी के गिलास को सामने रखकर कहा थैंक यू, रख दिया, पानी के वाइब्रेशंस बदल गए, क्रिस्टल आते हैं उसमें, क्रिस्टल कहते हैं, आकृति सी बन जाती है, एक विशेष कैमरे से देखी जा सकती है। दूसरे को बुरा बोल दिया, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं, बेकार हो, उसमें काले आ गए। देखो एक शब्द से, तो मैंने जब ये शुरू किया, मैंने वैज्ञानिकों की कुछ क्लिप देखकर ही शुरू किया था कि इनसे कितने सुंदर संकल्प तो हमारे पास हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, थैंक यू ये तो छोटा सा शब्द है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, ये संकल्प तो संसार में किसी को करने ही नहीं आते, बहुत महान संकल्प हैं ये दोनों, और हमारे सारे ही स्वमान के संकल्प बहुत महान हैं। तो हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे तो विनाश काल में प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। सीधा सा सिद्धांत है, आपने पढ़ा हो, मुरलियों में आता है कि जिन्होंने बाबा के कार्य में थोड़ी भी मदद की है, प्रकृति उनको भी मदद करेगी थोड़ी। और हम सब तो कितनी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, इसको पावन कर रहे हैं, तो प्रकृति बहुत मदद करेगी। उसके मदद करने के तरीके अपने अपने हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण तो खराब है पर हम सब जानते हैं, अभी यूक्रेन में वो हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, उसमें 500 लोग रहते थे, कोई मर गए कोई दब गए। अब जो जिंदे रहेंगे उनका हाल, हाथ टूट गया, सिर फट गया, आंखें टूट बाहर निकल गई हैं, मृत्यु हुई नहीं, एक एक पल। धर्मराजपुरी भी से भी भारी कुछ सजा हो वो हो जाएगा ना उनके लिए, अगर उन्होंने बाबा के कार्यों में कभी मदद की है तो प्रकृति की मदद ये होगी, पहले झटके में आत्मा गई, कोई कष्ट नहीं। तो ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, पर मृत्यु कष्टदायी नहीं होगी, जाना तो सबको ही होगा। कोई ये कहे हम बाबा के बन गए, बाबा आपने क्या कर दिया, हमारे बच्चों को ले लिया, ये नहीं होगा, लेना तो सबको है, सबको जाना है, वो लेने ही आया है। लेकिन कैसे जाती है आत्मा, खेल इस पर होगा। कोई हॉस्पिटल में रह के जाएंगे 2-4 साल, और कोई इस संदली पर योग में बैठ के चले जाएंगे, हुए ना यहां भी केस, 18 जनवरी को कही गए, बोली बोली माताएं योग कराती हुई 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, कईयों ने 4 बजे छोड़ दिया 18 जनवरी को, ये गति है ना श्रेष्ठ। तो हम सभी प्रकृति की भी सेवा करते रहेंगे। सो भावनाएं, ग्लोब पर बैठकर संसार को सकाश देना और प्रकृति की सेवा करना और भावनाओं से सेवा करना, हमारा स्नेह भी सेवा करता है, सब जानते हैं, स्नेह से तो हिंसक प्राणी को भी शांत किया जा सकता था, ये बहुत केसेज होते रहे। तो सभी ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि हम कर लें थोड़ी देर, 7:15 तक मैं भी आपके साथ हूं, 2 बहनों को अभी बैठा सकती हैं, गीता बहन 2 बहनें आ जाओ, और हम ये 3-4 अभ्यास कर लेते हैं अभी। रेड लाइट, दो संकल्प करेंगे। पहले मैं परम पवित्र आत्मा हूं, देखें अपना स्वरूप, मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी, देह की मालिक, मुझसे निकली हुई पवित्र गोल्डन किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। इस प्रकृति को पावन कर रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब बाप दादा का आह्वान अपने अपने घर में करेंगे। यहां से बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे परम सदगुरु, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे घर में पधारो। बाप दादा दोनों घर में आ गए हैं, खड़े हैं बीच में। उनकी किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। मैं बाबा के सामने हूँ, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। पूरे घर में बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा वापिस गए अपने धाम। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। देखें अपने को चमकती मस्तक मणि, प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का बहुत तेजस्वी प्रभाव मंडल है। मुझ पर पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। एक सुंदर गोल्डन किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। मैं फरिश्ता आकाश में ऊपर देखें अपने को, मैं पवित्रता का फरिश्ता प्रकृति का मालिक हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। प्रकृति इन्हें स्वयं में समा रही है। पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। मैं फरिश्ता पूर्वज ग्लोब के ऊपर विराजमान, सभी की पालना करने वाला, सभी के दुख हरने वाला, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, सिर के ऊपर छत्र छाया, बाबा की किरणें चारों ओर दूर दूर तक फैल रही हैं। संकल्प कर दें सभी सुखी हों, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी निर्भय बने, दुखों से मुक्त हो, आप सभी 15 मिनट एक ही अभ्यास में बैठेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। संकल्प को रिपीट कर सकते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।